आयत नंबर 11 से 22, 11-22, टॉपिक लिखिएगा जल्दबाजी, स्लैश डाल के लिखिए, यानी जल्दबाजी क्या है? तारीकी से गुजरे बगैर रोशनी तलब करना। याद रखिए, हर रात के बाद सुबह आती है। अगर आपको मुझे सुबह चाहिए ना, तो अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ये नहीं चाहते, वो कहते हैं कोई नाकामी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, बस हमें खैर मिल जाए। ऐसा नहीं होगा। यही तारीख से सीखता है इंसान, यही कायनात से सीखता है। और इसका एक दूसरा टॉपिक भी लिख लीजिए, दुनिया नकद और आखरत उधार। और इसीलिए शायद बहुत सारे लोग फिर इसके लिए तैयार नहीं होते। वयद उल इंसान बिश्शर्री दुआ अहू बिल खैर वकान अल इंसान अजूला। और इंसान बुराई की दुआएं मांगते लगता है, बिल्कुल इसकी अपनी भलाई की दुआ की तरह। और इंसान बड़ा ही जल्दबाज है। ये कहना कि अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुनता, ये जल्दबाजी है। कभी ना ये कहा करें। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अल्लाह तो सिर्फ चंद नेक लोग, जिनको हम नेक समझते हैं, ये भी कोई नहीं पता कि असल में वो नेक हैं भी कि नहीं। हमारे गुमान में वो नेक हैं, बस अल्लाह इनकी बहुत सुनेगा। तो ये गलत फहमी है, इसको दूर कीजिए। हमने रात और दिन को अपनी कुदरत की निशानियाँ बनाया है। रात की निशानी को तो हमने बेनूर कर दिया और दिन की निशानी को रोशन बना दिया, ताकि तुम लोग अपने रब का फजल तलाश कर सको, और इसलिए भी कि बरसों का शुमार और हिसाब मालूम कर सको। और हर चीज़ को हमने खूब तफसील से बयान फरमा दिया। असल बात क्या है कि वकुल इंसान अल्ज़मना तायरहू फ़ी उनुक़िह, और हर इंसान की बुराई भलाई को इसके गले में लगा दिया। सोचिए ज़रा, अपने अपने गले में देखे कुछ पहनना हुआ है? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, कोई लॉकेट, कोई चेन, कोई हार, और कुछ तो मंगलसूत्र भी पहनते हैं, और कुछ और डोरियों में काले काले धागों में बांध के भी कुछ पहनते हैं, और सोचते हैं कि ये काला तावीज़ मुझे बचा लेगा। तोड़ के फेंक दीजिए, अल्लाह आपको उस धागे के हवाले कर देगा। हदीस है, मैं अपने पास से नहीं कह रही। फरमाया जिसने तमीमा लटकाया, अल्लाह कहता है फरिश्तों जाओ इसको कहो इस धागे से अपने काम करवा ले, मैं नहीं करूँगा। धागा क्या कर सकता है धागे से? तो वो डॉक्टर अच्छा है जो आपके बच्चे को तो सही तरह डिलीवर कर देगी। कल मुझे एक डॉक्टर साहिबा ने बताया कि हर दूसरी औरत तकरीबन, यानी कहने की बात है, ऑफकोर्स हर एक ऐसा नहीं होगा, कि जो डिलीवरी के लिए आती है उसकी पेट पे काले रंग का धागा बंधा होता है। और कहती हमारे ऑपरेशन थिएटर में धागों के गुच्छे हो जाते हैं लटक लटक के, क्योंकि काटने पड़ते हैं। क्या देगा आपको धागा? ज़रा सा अकल से तो सोचें, धागे की बजाय बंदा वहाँ कुछ और चीज़ लटका ले तो शायद कोई फ़ायदा हो। धागे को तो आपने खुद ही काटना है, ये शिर्क है, ये सिर्फ ना समझी में होता है। वो मालिक कहिए हस्बी अल्लाह, वो काफ़ी है मुझे। तो रियाजा, हर इंसान की भलाई बुराई को अल्लाह ने उसके गले में लगा दिया। वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, और हम इसको क़्यामत के दिन इसके नामे अमाल की सूरत में निकालेंगे, जिसे वो अपने ऊपर खुला हुआ पाएगा। और कहा जाएगा इकरा किताबक, ले खुद ही अपनी किताब पढ़ ले। ज़रा इमेजिन कीजिए, रिजल्ट कार्ड में फेल हैं आप, और कहा जाए इधर आइए स्टेज पे खड़े हों और इस माइक में अपना रिजल्ट अनाउंस करें, और लोगों को बताएं कि मैं बहुत ही बुरे नंबरों से फेल हो गई हूँ, मैंने तो कोई एक नंबर भी नहीं सही लिया, और मैं तो किसी एक सब्जेक्ट में भी पास नहीं, मेरी तौहीद में मैं फेल, मेरी सुन्नत में मैं फेल, अपनी नमाजों में मैं फेल हूँ, हकूकुल इबाद में मैं फेल हूँ। सोचिए ज़रा कितनी शर्म आएगी। अपने हाथ से तो इंजेक्शन लगाना भी मुश्किल होता है, कोई लगा दे तो लग जाता है। क्या ही वो वक्त होगा जिस वक्त बंदे को कहा जाएगा कफ़ा बि नफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, आज के दिन तो अपना हिसाब लेने के लिए खुद काफ़ी है। दुनिया में दूसरों के लेते थे हिसाब, बोला मुनाफिक है, बोला खोटा है अंदर से, वो कोई और है, वो उसका कोई और थीम है, वो कोई और उसका मोटिव, वो किसी का एजेंडा। कितना मज़े मज़े से हुक्मरानों से लेकर उलमाए दीन से, दीन के खादिमों से भी हमारा मामला बदगुमानियों का होता है। फैमिली और ख़ानदान तो है ही बना इसलिए कि हमारे गुनाह माफ़ हों, उसके बारे में बदगुमान हो होकर। ज़रा सा सोचिए, क़्यामत के दिन इसी तरह का एक बड़ा सा पंडाल होगा जैसा ये हॉल है, और इसी तरह का स्टेज होगा, तसव्वुर में ले आइए। और एक एक ने खड़े होकर आकर सब के सामने अपने रिजल्ट कार्ड शो करने हैं, ये देखो मेरा हाल। ज़रा सोचिए तो सही, अगर उस नामे अमाल में ये लिखा होता, ये वीकेंड पे क्या कर रही थी, ये हॉस्टल में क्या हो रहा था, ये अम्मी अबू को बताए बगैर कहाँ चली गई थी, ये स्क्रीन पे क्या देख रही थी तुम कि शौहर को आता देखो बदल गई? और ये क्या था तुम्हारे फ़ोन में? ये किसका नंबर था छुपा रहा था? ये तुमने पासवर्ड क्यों लगाया हुआ था? ये इतने छुपा छुपा कर अपनी चीज़ों को क्यों रखते थे? पसीने आ जाएंगे। हम में से हर एक किताब लिख रहा है, और ये हमारी किताब ज़िंदगी है। किताब ज़िंदगी में क्या लिखा? इस एक आयत पे मैंने शायद बीसियों बार दर्स दिए हुए हैं, आज से कोई 15-20 साल पहले से शुरू करके। इतनी खूबसूरत ये आयत है, इंसान के हाथों के तोते उड़ जाते हैं। और यहाँ ये भी बता दिया कि किस्मत सितारों और चिड़ियों के उड़ाने में नहीं है, ये आमाल नामों के साथ लिखी हुई है। आपके मेरे आमाल की खूबी मेरे लिए बरकत है, और आपके मेरे आमाल की खामी मेरे लिए मनहूस है। शगुन नहीं लेना, यहाँ से ये भी सीखिए, बदशगुनी नहीं लेनी। फुलां बहू आई तो बदशगुनी ले, इसके आते ये हो गया, ये गाड़ी खरीदी तो बस ये हो गया, और ये बच्चा मनहूस है। नहीं, कोई मनहूस नहीं होता, एक ही चीज़ दुनिया में सिर्फ मनहूस है, और वो बंदे के बुरे आमाल है। और इसी की फिर पकड़ में बंदा बाज़ दफ़ा दुनिया में आता है और उसको पता भी नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो हमारे आमाल नामे हमारे साथ चिपके हुए हैं। मन इख्तदा फ़इन्नमा यख्तदी लिनफ्से, और जो कोई राह रास्त हासिल कर ले वो खुद अपने ही भले के लिए राह रास्त याफ्ता होता है। अगर आप और मैं यहाँ आकर बैठे हैं, थोड़ी सी एफर्ट तो की है ना, तो फ़ायदा आपको ही हो रहा है, मुझे ही हो रहा है। किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे इधर आने से अगर मुझे खुद को ना हो। और जो भटक जाए इसका बोझ इसी के ऊपर है। आप ना आए इधर क्योंकि आज रात को किसी की इफ्तारी बनानी है, शौक से बैठिए घर में। आपको उस इफ्तारी का अजर नहीं होगा जिसके लिए आपने नमाज छोड़ दी, क्योंकि आज मैंने शाहकार दिखाना है अपनी कुकिंग का, और मैंने 50 लोगों को खाना खिलाना है, वाह वाह होगी। तो क्या है, नमाज तो रोज़ ही पढ़ते हैं, इफ्तारी तो कभी कभी करते कराते हैं। नहीं, फरमाया जो भटक जाए इसका बोझ इसके अपने ऊपर है। कोई बोझ वाला किसी और का बोझ अपने ऊपर न ला देगा। और हमारी सुन्नत नहीं कि रसूल भेजने से पहले ही अजाब कर दें? और जब हम किसी बस्ती की हलाकत का इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के खुशहाल लोगों को कुछ हुक्म देते हैं और वो इस बस्ती में खुली नाफरमानी करने लगते हैं, तो इन पर अजाब की बात साबित हो जाती है। फिर हम इसे तबाह बर्बाद कर देते हैं। हमने नूह के बाद भी बहुत सी कौमें हलाक कीं, और तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार और खूब देखने भालने वाला है। यानी दूसरों को नहीं भी पता चलेगा तो तुम्हारे रब को तो एक एक बात पता है। तो समझ लो कि मन का नुरीदुलाजिला तजलना लहूफ़ी हामा नशा। बड़ी प्यारी आयतें हैं, इस पर ज़रा सी तवज्जो कीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। आज बहुत सारों का यही मसला है कि दुनिया नज़र आती है इसलिए उसके पीछे रो रहे हैं, उसी के गम, उसी के हम, उसी की ख्वाहिशें, उसी के वसवसे। और आखिरत जो ना ख़त्म होने वाली है वो छुप गई है। ये दुनिया जितनी करीब होती है ना, ये आखिरत उतनी दूर हो जाती है। लोग कहते हैं जहाँ मिठा त्यों किन्ने डिठा, जावांगे तो देखांगे, जो सब नल होसी हो साढ़े नल भी होसी, वो तो होसी तो फिर लग पता जाएगा। लोग कहते देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, आज देख लो, आज वक्त है। कोई मरता है हम कहते हैं हाय आंखें बंद हो गई, नहीं आंखें खुलती हैं, आंखें आज मेरी आपकी बंद है। वल्लाही अगर आज मेरी आपकी आंखें खुली होती तो हमारी तरजीहात ये ना होती जो आज है। इतनी दुनिया के अगली पूरी ज़िंदगी ना कमाएं तो भी भूखे ना मरें, और आखिरत अभी भी रिस्क पे है। अल्लाह ताला आपकी मेरी इस्लाह फरमा दे। मन का न युरीदुल आजिलत अज्जलना लहू फीहा मा नशा लिमन नुरीद, जिसका इरादा सिर्फ़ इस जल्दी वाली दुनिया यानी फौरी फ़ायदे का ही हो, इसे हम यहाँ जिस कदर जिसके लिए चाहें सरे दस्त दे देते हैं। यानी जो सिर्फ दुनिया मांगता है ना, अल्लाह उसको दुनिया भी सारी नहीं देता, उतनी उसको देता है जिसको अल्लाह ही चाहता है। लेकिन बिलाखिर इसके लिए हम जहन्नम मुकर्रर कर देते हैं, जहाँ वह बुरे हालों में थुतकारा हुआ दाखिल होगा। और जिसका इरादा आखरत का हो, दुआ करें हम इसमें शामिल हो जाएं। अल्लाह हमारे इरादे आखरत के बना दे, हमारा जीना मरना आखरत के लिए हो जाए, आखरत ओरिएंटेड दुनिया हमें मिल जाए। आपकी मेरी एक एक हरकत, आपका मेरा एक एक अमल मेरी आखरत पे असर डालेगा। भाग लीजिए, नेकियां कर लीजिए, जितनी करनी है आखरत में दिखेंगी, और गुनाहों में भाग लीजिए वो भी दिखेगी। कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा आखरत में। हदीस है, जिसने दुनिया बनाई उसकी कुछ ना कुछ आखरत ज़रूर छूटेगी, और अपोजिट भी है। और हम उस आखिरत को रिस्क पे डालकर इस दुनिया का रिस्क लेने से बच जाते हैं। आज ख़त्म हो दुनिया से जाएं, जो लिया सब डिग्रियां हाथ में पड़ी रहेंगी, जायदादों के ऊपर झगड़े पड़ चुके होंगे, सगे भाई बहन लड़ लड़ मरेंगे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, लोग सोचेंगे ये बहनें बाप को याद करके रो रही हैं, पता चला वो भाइयों के विरसा ना देने पर रो रही हैं। और क्या बोलो, ये दुनिया मेरी आपकी, हर दिन सुबह होती है और शाम होती है, और हम इस दुनिया के पीछे अनटूट भाग दौड़ का शिकार होते हैं। ये दुनिया ही है जिसने आपको मुझे कुरान पढ़ने के दौरान भी कई चीज़ों में उलझाया हुआ है। इस दुनिया को दूर कीजिए, दनुव दूर कीजिए, अदना है ये, जितना दुनिया दूर होगी आप उतना नेचुरली हर चीज़ को सही तरह से समझेंगे, वरना तो बंदा अंधाधुंध भागता है इन्हीं चीज़ों के पीछे। और अल्लाह ताला ने हम सब को इख्तियार देकर मुश्किल में डाला, आजमाइश है मेरी आपकी। जैसे बेनियाजी का अंदाज़ आपको इन आयतों में दिख रहा है, फ़कीर आता है ना तो कहता है रोटी दे दे, चावल दे दे, आप कहते पकड़ बाबा जा जा माफ़ कर, ऐसे थुत थुत थुत, दुनिया मांगने वाले को अल्लाह कहते दे दो फरिश्तों दो दो, मुझे नहीं परवाह इसकी। और जब कोई हराम से मांगे तो अल्लाह सबसे पहले देता है, जाओ इसको मेरे से दूर कर दो, मुझे इसे घिन आती है। और जो बेचारा आखिरत मांगता है अल्लाह उसको दुनिया भी दे देता है। अल्लाह हमें दुनिया भी दे आखिरत भी दे। याद रखिए, दुनिया से अल्लाह ने नहीं रोका, अगर आखिरत आपको मुझे अल्लाह ने देनी है ना तो दुनिया भी अल्लाह ने दी हुई है, कौन दे सकता। ये दुपट्टा आपको किसने दिया, ये फ़ोन किसने दिया, ये कुर्सी मेज़ किसने दी, अल्लाह ने दी, बंदों के असबाब में छुपा कर देता है। तो जब दुनिया इतनी प्यारी उसने दे दी तो आखिरत क्यों नहीं देगा। अपनी दुनिया को देख देख कर खुश हुआ करें, अल्लाह से कहा करें कि अल्लाह आदत हो गई अच्छी चीज़ों की, अब वहाँ हमें बुरी ना देना, जहाँ हम आराम के आदि हो गए वहाँ बेआराम ना करना, और अल्लाह हमें दुनिया आखिरत दोनों में जो मिले उसको पाकर अल्लाह के करीब कर दे। अब ज़रा सुनिए कि आखिरत का सिर्फ इरादा ही काफ़ी नहीं है, बल्कि दुनिया सिर्फ इरादा है, आखिरत के इसमें थोड़ा सा इजाफा है। वमन अराद अल आखिरत वसालह सायह वहुव मोमिनुन फौलाइका कान सायहुम मशकूरा। तीन शर्तें हैं आखिरत पाने की, क्या, और जिसका इरादा आखिरत का हो और जैसी कोशिश इसके लिए होनी चाहिए वो करता भी हो। इस पे गौर कीजिए। देखिए, आप कहते कोशिश कर तो रहे हैं आखिरत के लिए पर उतनी नहीं कर रहे जितनी करनी थी। बस अब खाना पकाएं, चूल्हे पे रखें, हंडिया गरम हो, आप उसमें सब्ज़ी गोश्त दाल जो पकाने रखे डालें, चूल्हा खोल दें, खूब एक जोश आ गया, आपने अपने ज़ोम में कहा मैंने हंडिया चढ़ा दी, फिर चूल्हा बंद कर दें, क्या वो दाल गल चुकी होगी। आप कहते हैं इस दाल को उतनी देर गलाओ जितना इसके गलने का हक है, इस सालन को पकाओ, इसका शोरबा सुखाओ ताकि इसका कोई जायका आए, बीच पकी हुई अधूरी हंडिया में से एक लुकमा चख के तो देखिए, थूक देंगे, बस अपने ऊपर लीजिए, मैं भी लेती हूँ, कोशिशें तो हैं मेरी आखिरत के लिए, अधूरी तो नहीं है, आधी तो नहीं है, शुरू तो बड़े जोश से करती हूँ, बीच में तो नहीं लटका देती। याद रखिए, आखिरी कदम जब तक जन्नत के अंदर नहीं पहुंच जाएगा मैं और आप बच नहीं सकते। मौत की हिचकी तक अगर एहतिनस सिरातल मुस्तकीम कहकर इस पे चलने की कोशिशें और उतनी कोशिशें जितना कोशिशें करने का हुक्म है, और साथ ही साथ ईमान की शर्त, अगर शिर्क बेदत आ गया, इरादे कुछ और हो गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये तीन काम कर लीजिए, बस यही लोग हैं जिनकी कोशिश की अल्लाह के हाँ पूरी कदरदानी की जाएगी। दुआ कीजिए अल्लाह में ऐसी कोशिशें करने वाला बना दे कि जिसके बाद अल्लाह ताला हमारी कदरदानी कर ले। और इसके अलावा कुल्लन नुमिद्दुहा उलाई वहा उलाई मिनताई रब्बिक, और हर एक को हम वहम पहुँचाए देते हैं, इन्हें भी और उन्हें भी, यानी दुनिया वाले को भी हम ही दे रहे हैं और आखिरत मांगने वाले को भी हम ही दे रहे हैं। तेरे परवरदिगार के इनामात में से तेरे परवरदिगार की बख्शिश रुकी हुई नहीं, देख ले कि इनमें हर एक को एक पर हमने किस तरह फजीलत दे रखी है, और आखरत तो दर्जों में और भी बढ़कर और फजीलत के एतबार से बहुत बड़ी है। जैसे दुनिया में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं ना, आप भी मानते हैं, अगर सब एक जैसे होते तो तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी। कभी बाज़ दफ़ा छोटे छोटे काम करते हुए लोगों को देखे, आपके गटर साफ़ करते हैं, सड़कें साफ करते हैं, आपके लिए कुर्सियाँ बिछाते हैं, कभी सोचा करें कि जब दुनिया में ये है तो आखिरत में नहीं होगा, आखिरत में भी होगा। आप क्या चाहते हैं, दुनिया में जैसे अल्लाह ने आपको मालिक बना दिया, कोई आपका मुलाजिम है, आप और मैं आखिरत में मालिक बनना चाहते हैं कि मुलाजिम, ओनर बनना चाहते हैं कि टेनेंट, अपना घर खरीदना चाहते हैं कि किराए का घर लेना चाहते हैं, ये बात है। तो ज़ाहिर है जितने पैसे होंगे उतना ही मिलेगा, पल्ले में जो होता है उतने की शॉपिंग करके आते हैं आप। यहाँ तो कोई आपको शायद उधार दे दे के चले हम आपको जानते हैं, वहाँ जाकर कोई नहीं देगा। तो अब करना क्या है, अब उसका नुस्खा आगे आ रहा है, ला तजल मा अल्लाही ला खना खर, अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना ठहरा कि आखिर तो बुरे हालों में बेकस होकर बैठ रहेगा। की पॉइंट जन्नत में जाने का, एक अल्लाह को मानो, ज़ाहरी बातनी ढके छुपे हर शिर्क से खुद को बचा लो। यहाँ बात हुई नामे अमाल के गर्दन में डालने की और मनहूसियत की। बस लोग किसी एक दूसरे को अपनी नाकामियों की वजह जानते हैं, तो हदीस सुन लीजिए, सही मुस्लिम में आता है, बीमारी का मुतद्दी होना, ये एक से दूसरे को लग जाना कोई चीज़ नहीं है, फल कोई चीज़ नहीं, हर इंसान का अमल इसके गले का हार है, हर दिन के अमल पर मोहर लग जाती है जब मोमिन बीमार पड़ता है। सोचिएगा इसको सुनकर बहुत आप खुश होंगे अगर आप वाकई बाकायदगी से कोई नेकी करते हैं और किसी दिन बीमारी की वजह से ना कर सकें। मोमिन बीमार पड़ता है तो फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह तूने फुलां को तो रोक लिया है। अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाता है, इसके जो अमल थे वो बराबर लिखते जाओ, यहाँ तक कि मैं इसे तंदुरुस्त कर दूँ या फौत कर दूँ। आप यहाँ रोज़ आ रहे हैं, अल्लाह आपको सेहत दे। किसी हकीकी उज़र, ये नहीं कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर दर्द, ये कोई उज़र नहीं है। साहबा को कभी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी नहीं रोकता था अल्लाह के कामों से। अल्लाह ना करे कोई ऐसा उज़र आ जाए, घर बैठे आप यहाँ बैठने का अजर पाएंगे, ये अल्लाह का वादा है। याद रखिए कि अल्लाह ने यहाँ अपने क़दरदान होने की बात की, सायहुम मशकूरा, तो अल्लाह के यहाँ क़दरदानी के लिए तीन चीज़ें नोट कीजिएगा। अल्लाह किस चीज़ की कदर करता है? नंबर एक, इरादा आखरत, यानी इखलास और अल्लाह की रज़ा जोई के लिए आखरत तलब करना। दूसरा, ऐसी कोशिश जो इसके लायक हो, मुराद सुन्नत के मुताबिक हो, अपनी मर्ज़ी की नेकियाँ करके जन्नत में नहीं जाएंगे। और तीसरी चीज़, ईमान, क्योंकि इसके बग़ैर तो कोई अमल भी काबिले तवज्जुह नहीं, यानी कबूलियत अमल के लिए ईमान के साथ इखलास और सुन्नत नबी के मुताबिक अमल होना ज़रूरी है, अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। और क्या सीखा इन आयात से? पहली बात, अपने रब का फ़ज़ल तलाश करना है। हर कोई अपने अमल का ज़िम्मेदार है, लिहाजा मैंने अपने अमाल की ज़िम्मेदारी लेनी है। जो बुराई करेगा इसकी गुमराही का वबाल इसी पर होगा, इसलिए बुराई से बचना है। एक गिरोह को अपने अमाल की वजह से दूसरे पर फजीलत दी गई, मैंने नेकियों में भरने की कोशिश करनी है, अल्लाह के सिवा किसी की ग़ुलामी नहीं करनी, और अपना मुहासबा करना है कि मेरी दुआएं खैर वाली या शर वाली कैसी होती हैं। आगे देखिए 23 से 30, बहुत ही प्यारा रुकू है, इसका टॉपिक लिखिए, इख्तियार में इम्तिहान है। आपको मुझे अल्लाह ने विल पावर दे दी और फिर कहा देखो करते क्या हो, अल्लाह के मामले में भी और बंदों के मामले में भी। और इस आयत के बारे में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कॉल भी इसके टॉपिक के साथ लिख लीजिए, तौरात के अहकाम अशरा का कुरानी बयान, यानी ये आयतें जो आप में पढ़ने लगे ना, ये तौरात में 10 कमांडमेंट्स के नाम पर मौजूद थी और इनको बदीहात उम्मा कहते हैं, हर उम्मत के अंदर ये बातें मौजूद थी, बेसिक्स ऑफ एवरी रिलीजन। क्या था? सबसे पहली चीज़, वक़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैनि एहसाना। अब यहाँ से अगर आप तरतीब देखेंगे ना, तो आपको हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद का बड़ा खूबसूरत मजमुआ दिखेगा। सबसे पहले अल्लाह का हक, और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका कि तुम इसके सिवा और किसी की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं, तो इनके आगे उफ ना कहना, ये है आपका मेरा रिश्ता इस दफ़ा का, उफ। आप देखिए, आप नोट कीजिएगा, उफ उफ, तुम्हारे उफ से उनके दिलों के चिराग बुझ जाएंगे। बुढ़ापे में माँ बाप का दिल बहुत छोटा हो जाता है, औलाद जब खूब बोलती है, वही माँ बाप जिन्होंने उसको बोलना सिखाया होता है, जब वो माँ बाप के आगे आकर बदतमीज़ी से बोलते हैं, यल करते, चीखते, और आपको तो कुछ पता ही नहीं, तो माँ बाप का दिल बुझ जाता है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि अगर उफ़ से भी छोटा कोई लफ्ज़ होता तो अल्लाह उससे भी रोकता। और आप देखिए, अलिफ फा अरबी में अक्सर लफ्ज़ तीन हरफी होते हैं, सलासी, सह हरफी, इसमें सिर्फ दो लफ्ज़ हैं, अलिफ और फा, उफ़। और किसी भी नागवारी के एहसास पे नेचुरली जो मुंह से निकल जाता है ना, वो उफ़ उफ़, बड़ी गर्मी, उफ़ बहुत मर्चें, उफ़। माँ बाप के हकूक़ की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये हकूक़ की बातें नहीं आज करूँगी। जहाँ मोहब्बत की बात है, जज्बात की बात है, इमोशंस की बात है, उफ़ नहीं करना, ना इन्हें डांट डिपट करना। जवान माँ बाप हों और बच्चा छोटा हो ना, तो कभी कभी बचपन में भी बच्चे बदतमीज़ी करते हैं, दो चार साल के स्कूल जाते, माँ पे चीखेंगे, माँ बाप का दिल बड़ा होता है, वो कहते हैं ये भूखा है, जिस स्कूल से थका हुआ आया है, इसको नींद आई है। बट जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं और आप जवान हो जाएं, और आज का पूरा भारत जवान औलाद और माँ बाप का ताल्लुक़ है, इसमें बेबीज़ का जिक्र नहीं आ रहा, जब आप जवान हो और आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएं, फिर आपकी डांट उनको पत्थरों से भी भारी लगती है, क्योंकि आगे से बोल नहीं सकते। आप उनकी आंखों में नमी देखा करें और उससे अपनी इंटेंसिटी चेक करें कि मेरी टोन क्या है, मेरी पिच क्या है। डांटना डपटना तो बड़ी दूर की बात है, उनके साथ खुरदरे लहजे में बात करते हुए भी देखा करें तो एकदम बेबसी के आंसू उनकी आंखों में आ जाएंगे। बल्कि इनके साथ अदब और एहतराम से बात करना, पहला जज्बाती ताल्लुक बात और चीत का। आगे चलिए, फिर इकट्ठा बात करेंगे। अब बैठने का तरीका सिखाया जा रहा है, ये हकूक़ नहीं है, ये आदाब है। ये माँ बाप को अपने लिए दुनिया का सबसे कीमती और सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स समझना है। पीछे सूरह यूसुफ में पढ़ के आए, रफ़ा अबवैहा, अपने माँ बाप को तख्त पे बिठा दिया, तभी तो इज़्ज़त मिलती है, तभी तो आजिज़ी मिलती है। तो अब पहले बोलने का तरीका लिख लें, नंबर 1, 2, 3, तो आपको इंशाल्लाह बातें क्लियर होती रहेंगी। पहली चीज़, माँ बाप से बोलना कैसे है, अब देखिए उनके सामने बैठना कैसे है और उसका तरीका क्या है। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़िल्ल मिनर रहमत, यहाँ तक, और आजज़ी और मोहब्बत के साथ इनके सामने तवाज़ुह का बाजू पस्त रखे रखना। करके दिखाऊँ ना अगर आपको, तो बाजुओं को झुकाकर बिल्कुल, अगर आप अपने आप को नीचे बिठाकर तशहुद में बिठाएं ना, नज़रें झुकी हुई, हाथ ऐसे घुटनों पे, ऐसे अकड़ नहीं, रिजेंटमेंट नहीं, कोई बड़ाई नहीं, ऐसे झुके हुए बैठो जैसे परिंदा उड़ने से पहले पर सुखेड़ता है ना। माँ बाप के आगे ऐसे बैठो जैसे पर सुखेड़े हुए, तभी तो उड़ोगे। जो अपने बाजुओं को माँ बाप के आगे तवाज़ों से सुखेड़ते नहीं हैं, वो उड़ नहीं सकते। और एक बात लिख लें, एक जेम बना लीजिए, अभी से इसको छोड़ दें, माँ बाप को दुखी करके, रुला कर, परेशान करके सब कुछ मिल सकता है आपको दुनिया में, इज़्ज़त मिल सकती, शोहरत मिल सकता, स्टेटस मिल सकता, आपके फॉलोअर्स बन सकते, लेकिन जन्नत नहीं मिल सकती। जन्नत की कीमत माँ बाप को खुश करो, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, अपने माँ बाप की तरबियत नहीं करो, उनका ख्याल रखो। और तीसरा काम, अब क्या करो, बैठने का तरीका भी सिखा दिया, मुंह पे क्या हो, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और दुआ करते रहना कि मेरे परवरदिगार इन पर वैसा ही रहम कर जैसा उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की है। ये तीन हक, तीन जज्बाती ताल्लुक है। अल्लाह ने यहाँ माँ बाप का लफ्ज़ बोलकर आपको मुझे जज्बाती कर दिया, और अगर जज्बाती ताल्लुक महसूस नहीं करेंगे तो आप उनका हक भी अदा नहीं कर पाएंगे। इसके बरक्स अगर आज का दौर देखिए, हम आपके इसी शहर में एक कॉलेज है, तो उनके प्रिंसिपल के साथ मीटिंग थी, और कुछ भी जो बात हुई तो जो बात उनकी मेरे दिल को लग गई, उन्होंने कहा कि आज जो बच्चों को सिखाने वाला सबक है वो अदब है। बच्चे अदब नहीं करते, माँ बाप की बात हो या टीचर्स की, और छोटे बच्चे नहीं, हाई स्कूल और कॉलेज की बात है। तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने गलत सुना, क्योंकि मैंने तो ये वेस्ट में जुमले सुने हुए थे, यहाँ भी ये जरा सीम आ गए। कहने लगे, जी यंग बच्चे, टीनेजर बच्चे आके हमें माँ बाप के बारे में ऐसी रौनक से बात करके कहते हैं, क्या मेरे बाप को हक है कि मुझे रोके इस बात से कि मैं एक लड़की से मिलूं? क्या मेरी माँ को हक है कि वो मुझे फलां लड़के से मिलने से जाने से रोके? तो याद रखिए, जो देखेंगे, जो दिखाएंगे, जिनके नक्शे कदम पे जाएंगे, उधर ही फिर हमारी नस्लें भी जाएंगी। तो माँ बाप के साथ ताल्लुक जोड़ लीजिए। याद रखिए, इनकी कदर तब आएगी जब ये नहीं होंगे। ये वो नेमत है जिसकी बारे में आप कह सकते हैं कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। किसी मन चले ने तो ये किसी माशूका के लिए कहा होगा ना, आशिक के लिए कहा होगा, लेकिन माँ बाप पे ये बहुत फिट होता है। ज़िंदगी में इनकी बातें बोझल लगती हैं, कड़वी लगती हैं, परेशान होता है, लेकिन अपने लिए दुआ कीजिए, रब इरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। 3 दफ़ा दिल में अपने माँ बाप के लिए, चाहे ऊंची आवाज़ से कह दें, आपकी मर्ज़ी है, और एहसास कीजिए, महसूस कीजिए कि अगर पैदा होते ही वो आपको पकड़ कर ट्रैश बैग में डालकर फेंक आते, ईदी सेंटर के किसी कचरा बॉक्स में फेंक आते, तो क्या होता? और उनका ये हक था, और हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हम माँ बाप को अपना हक समझते हैं, इसलिए फिर हम उनकी बातों पे कहते करना नहीं था। और एक बच्ची की बात शायद मैं हर साल ही सुनाती हूँ, कहती है ना करती पैदा, मैंने कब कहा था? इट वॉज़ योर चॉइस, इट वॉज़ योर फन। अब आप खुद ही समझ जाए, जब ज़ुबानें इतनी लंबी हो जाएं माँ बाप के आगे औलादों की कि ना करते पैदा, मैंने कोई कहा था मुझे पैदा करो, तो अब क्यों हक मांगते हो? तो फिर बताइए आप ऐसे बच्चों से क्या मांगेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत के करीब औलादें इतनी नाफरमान होंगी कि बे औलाद को लोग रश्क से देखेंगे कि तेरी औलाद नहीं है। और अक्सर लोग कहते हैं औलाद है बुढ़ापे का सहारा। जाइए देखिए ज़रा घरों में, 10 घर जाकर ढूंढिए, माजरत के साथ कहूँगी मैं, पहले तो बेटियाँ रुख्सत होके जाती थी ना, तो कहते थे कोई नहीं बेटे हैं घर बने रहेंगे। आज बेटे बेटियाँ दोनों पहले ही चले जाते हैं पढ़ने के नाम पर, बूढ़े बूढ़ियाँ अकेले। और अक्सर ख़वातीन कहती हैं हमें मौका ही ना मिला, अकेले मियाँ के साथ रहने का मज़ा मिला ही नहीं। और वाकई जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा फ़न है कि मैं और मेरा मियाँ, घर में कोई भी ना हो। गए थे तो ससुराल था, नंदे थी, देवर, फिर ये थे, फिर ये था, हम दोनों इकट्ठे, हम तो कभी हनीमून पे भी नहीं गए, और गए तो साथ वहाँ भी नंद को साथ भेज दिया साजने के, ख्याल रखना ज़रा। तो मैं उनको कहती हूँ फिक्र ना करें, बुढ़ापे में आपका ये शौक़ पूरा हो जाएगा, दुआ करें बुढ़ापे में बुढ़ी बुढ़े सलामत रहें। असल प्यार और असल ज़रूरत शौहर को बीवी की और बीवी को शौहर की बुढ़ापे में होती है। जवानी में तो बीवियां भी बहुत ही मसरूफ़ होती हैं बच्चों की देखभाल में, और मर्द भी कहीं कैरियर बना रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं कमा रहे हैं। बुढ़ापा बहुत बुरी चीज़ है। बूढ़े माँ बाप को वक्त देना, उनके पास बैठना, उनसे उनकी जवानी की बातें करना, उनको बहुत प्यारा लगता है। आप आज जाकर अगर आपकी माँ या आपके जो भी बूढ़ों में, नानी दादी में, आप जाकर उनसे पूछें, सुनाएं जब मैं पैदा हुई थी तो क्या हुआ था, और नानी माँ आप बताएं आपकी शादी हुई थी तो आपने किस रंग के कपड़े पहने थे, ऐसे झीपेंगी, खुश हो जाएंगी। देखिए बस दफ़ा पैसे देकर या ख्याल रखकर या मासी नौकर रखकर हम कहते हैं ख्याल तो रख रहे हैं, तो अगर वो भी आपके लिए आया रख देते और नोटों में आपको तोलते रहते और आपको अपना लम्स और प्यार ना देते, तो बच्चे को पैसे नहीं चाहिए होते, बूढ़ों को भी पैसे नहीं चाहिए होते, उनको आप चाहिए। 10 मिनट, 5 मिनट घर में आते हुए, घर से जाते हुए अगर 5 मिनट बैठ के दुआ ले लेते हैं, दुआ देते हैं, आपका अच्छा दिन गुजरेगा। वो तो सारा दिन इंतज़ार करते रहते हैं कि आप कब आएँ, और आप आकर सीधे निकल गए तो रोएंगे नहीं और तड़पेंगे नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए उनको, वल्लाह वो तो अब खाते भी कुछ नहीं, उनको आपसे कोई आपके बहुत मुर्ग मुसल्लम नहीं चाहिए, आप खाएं आपके बच्चे खाएं, नसीब हो उनका। और इसमें मैं बहुओं को भी कहूँगी, इस उम्र तक पहुँचने में तो सास ससुर भी अपने माँ बाप बन ही चुके होते हैं, आज से उनको भी अपना माँ बाप समझें। उनका बुढ़ापा, उनकी दवाइयाँ, उनका हाई ब्लड प्रेशर, उनकी शुगर, उनके दिल का कमज़ोर होना, इस पर रहम कीजिए, और रब इरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये दुआ मांगा करें, माँ बाप का हक है कि आप अपने माँ बाप के लिए ये दुआ मांगें। ये दुआएं लगती हैं, और जितना दिल से मांगेंगे अल्लाह उनको उतना फ़ायदा देगा। अब एक सवाल रहता है कि आप तो करते हैं वो खुशी नहीं, और ये सवाल उठता है ख़ास तौर पे दीन के काम करने वालों की तरफ से। वो औलादें जो नेक हो जाएं और माँ बाप अभी गुनाह पे हैं या गलत चीज़ों की दावत दें, और दूसरा ये कि दुनिया के साथ साथ दीन के तकाजे इतने निभने जाने मुश्किल हो रहे हैं, अब दिल में प्यार है, ख्याल भी रखते हैं। आपको पता है, आप घर में भी हों तो भी उनको कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता और वो मुतमईन है, और मैं जो कर रही हूँ उनको भी तो फ़ायदा होगा, मैं उन्हीं का तो सदका जा रही हूँ। तो फिर क्या कीजिए, आपके लिए अगली आयत में जवाब है, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु काना लिल्लवाबीन गफूरा। जो कुछ तुम्हारे दिलों में है इसे तुम्हारा रब बखूबी जानता है, अगर तुम नेक हो तो वो रुजू करने वालों को बख्शने वाला है। एक शख्स ने कहा, अल्लाह के नबी, मेरा बाप मुझसे इस हाल में रुख्सत हो गया कि वो मुझसे खफा था, नाराज़ था किसी भी वजह से, अब क्या करूँ? कहा, तुम उसके लिए दुआ किया करो, रब इरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और रिश्तेदारों का और मिस्कीनों और मुसाफिरों का हक अदा करते रहो, और इसराफ और बेजा खर्च से बचो। बेजा खर्च करने वाले शैतानों के भाई हैं, और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा ही नाशुकरा है। और अगर तुझे इनसे मुंह फेर लेना पड़े अपने रब की रहमत की जस्तजू में, जिसकी उम्मीद रखता है, तो भी तुझे चाहिए कि उम्दगी और नरमी से इन्हें समझा दे। अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ न रख, और ना इसे बिल्कुल ही खोल दे, यानी ना बहुत फजूल खर्च हो और ना बिल्कुल कंजूस, कि फिर मलामत किया हुआ दरमांदा बैठ जाए। यकीनन तेरा रब जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है, यकीनन वो अपने बंदों से बाखबर और खूब देखने वाला है। अबू दाऊद और इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी नबी सल्लम के पास आए, सवाल किया, अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप के इंतकाल के बाद भी इनके साथ मैं कोई अच्छा सलूक कर सकता हूँ? अब ये भी समझ लीजिए, ज़िंदगी में तो एहसान के वो 22 या 25 मरहले हैं, जो हमने पीछे भी मैंने आपको रिकमेंड किया था, वबिल वालिदैनि एहसाना में लेक्चर भी एक मौजूद है, माँ बाप मेरी जन्नत मेरी जहन्नम कुछ इस तरह। तो हकूक दुनिया में ज़िंदगी में तो बहुत से हैं, मरने के बाद क्या कर सकते हैं? फरमाया, इनके जनाजे की नमाज़ पढ़ो, बल्कि खुद पढ़ाएं। आज एक छोटा सा काम तो कीजिए, अपने बच्चों को बिठा कर एक सवाल कीजिए, बेटियों से पूछिए, आप माँ हैं इसलिए, और आपके शौहर अपने बच्चों से पूछें, जब मैं मर जाऊँगा या मर जाऊँगी तो मुझे गुस्ल कौन देगा? और दूसरा सवाल, मेरा जनाजा कौन पढ़ाएगा? और अगर आपकी बेटियाँ आपको गुस्ल देने के काबिल नहीं हैं, तो बेकार है उनकी मास्टर्स की डिग्रियाँ और उनके दुनिया के बड़े बड़े काम करना। और सेम बात बेटों के लिए, बाप के लिए। और अगर बेटा बाप की या माँ की जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ा सकता, तो फिर जो मर्ज़ी पढ़ ले या पढ़ा ले, जिस दर्द और तड़प के साथ वो आपके लिए उस दिन दुआ करेगा, कोई और नहीं करेगा। जितना साक उतना सेक, जितना रिश्ता होता है ना उतना प्यार होता है। अल्लाह के नबी सल्लम अपने किसी बड़े ही अजीज़ सहाबी का जनाजा पढ़ा रहे थे और रो रहे थे रो रहे थे रो रहे थे, इतना प्यारी नमाज पढ़ाई के पीछे एक सहाबी खड़ा धाड़े मार के रोने लगा। लोग समझे कि ये मरने वाले पे रो रहा है, का सब्र करो सबने जाना है, तुम भी जाओगे मैं भी। कहा, मैं इसलिए थोड़ी रो रहा हूँ कि वो चला गया, जाना तुम सबने। साहबा मौत को बड़ा इजी लेते थे, इट्स ओके वहाँ मिलेंगे, यकीन था ना, हम तो मौत के लव से डिप्रेस हो जाए। कहने लगा, उसके लिए नहीं रो रहा, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि काश ये जनाजा मेरा होता और अल्लाह का नबी ये मेरा जनाजा पढ़ा रहे होते। दुआ और इस्तग़फ़ार करना, फिर इनके वादों को पूरा करना, इनके दोस्तों की इज्जत करना, और वो सिला रहमी जो सिर्फ इनकी वजह से हो, क्योंकि माँ बाप के जो रिश्तेदार हैं वो आपके भी हैं। माँ की बहन है तो आपकी खाला है, बाप का भाई है तो आपका चचा है, लेकिन आप अपने नाते से नहीं, माँ बाप के नाते से उनसे मिलिए। ये है वो सलूक जो इनकी मौत के बाद भी तो इनके साथ कर सकता है। रब इरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इस शऊर के साथ ये दुआ मांगा करें। और आपको मैं एक अमल छोटा सा बता दूं, अगर आप करना चाहें, अपने लिए भी दुआ करें ना, तो माँ बाप के नाते से किया करें। मसलन आपको कुछ चाहिए और आपको पता है अगर वो नेमत आपको मिल गई तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होगी? माँ बाप को होगी। आपकी अपनी नेमत से ज़्यादा, यानी आपसे ज़्यादा आपके माँ बाप को खुशी होती है। तो अल्लाह से कहा करें, अल्लाह मुझे ये नेमत दे दे ताकि मेरे माँ बाप खुश हो जाएं। और इसमें फिर आप अपने उस्तादों को डालें, अपने ससुराल को डालें। तीन माँ और तीन बाप होते हैं एक बंदे के, वो माँ बाप जो दुनिया में लाने का ज़रिया बने। हमारे कल्चर में तो रिजात है नहीं, वरना रिजाई माँ बाप का भी दर्जा, और फिर उस्ताद। माँ बाप आसमान से नीचे लाते हैं, उस्ताद नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं। और इसी तरह ससुराल, जिसके बाद आपका एक स्टेटस बन जाता है। उनसे पूछिए जिनकी शादियाँ नहीं होती, कितना बड़ा हम है उनके लिए। अबू दाऊद और इब्ने माजा की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान माँ बाप के यतीम बच्चे को पाला और खिलाया पिलाया यहाँ तक कि वो बेनियाज हो गया, इसके लिए यकीनन जन्नत वाजिब है। और जिसने किसी मुसलमान ग़ुलाम को आज़ाद किया, अल्लाह इसे जहन्नुम से आज़ाद करेगा और इसका एक एक उस जहन्नुम से आज़ाद होगा। और इसमें एक रिवायत में आता है, जिसने अपने माँ बाप को या दोनों में से किसी एक को पा लिया फिर भी दोजख में गया, अल्लाह इसे अपनी रहमत से दूर करे। बददुआ है उसके लिए, अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करें। फिर एहसान नहीं जतलाना वरना अजर ज़ाया हो जाएगा। गरीब रिश्तेदार, मिस्कीन और ज़रूरतमंद और मुसाफिर, इनकी मदद कीजिए और एहसान ना जताइए, बल्कि ये माल का वो हक है जो अल्लाह ने ख़ुद ही आपके मालों में इन लोगों का रखा है। नहीं करेंगे इनका ख्याल तो अल्लाह के यहाँ मुजरिम होंगे। तो ये गोया कि हक की अदायगी है, कोई एहसान नहीं है। सही मुस्लिम की रिवायत है अबू हुरैरा से, आपने फरमाया, अल्लाह की राह में खर्च किया कर, अल्लाह तुझ पे खर्च करेगा। आपने फरमाया, हर सुबह दो फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, एक दुआ करता है कि अल्लाह सखी को बदला दे और दूसरा दुआ करता है बखील का माल तलब कर दे। सदके खैरात से किसी का माल नहीं घटता और हर सखावत करने वाले को अल्लाह इज्जत वाला बना देता है। और जो शख्स अल्लाह के हुक्म की वजह से दूसरों से आजिज़ाना बर्ताव करे, अल्लाह इसे बुलंद दर्जे का कर देता है। ये सारी खूबियाँ हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आज के दौर में अमूमन माँ बाप के बारे में लोग क्या सोचते हैं। ये एक तहरीर है, कुछ हिस्सा कोशिश करती हूँ आपको पढ़ के सुना दूँ। टॉपिक है खामोश दोस्त। जवानी में इंसान बाप को शक की निगाह से देखता है, जैसे बाप को हमारे मसाइल, तकलीफ़ों या ज़रूरतों का एहसास ही नहीं, ये नए दौर के तकाज़ों को नहीं समझता। कभी कभी हम अपने माँ बाप का मवाजना भी शुरू कर देते हैं, इतनी मेहनत हमारे बाप ने की होती, बचत की होती, कुछ हमारे लिए बनाया होता तो आज हम भी फलां की तरह आलीशान घर और गाड़ी में घूम रहे होते। कहाँ हो, कब आओगे, ज़्यादा देर ना करना, इस जैसे फजूल लगते थे सवाल जवाब जो माँ बाप पूछते थे। स्वेटर तो पहना है ना, कुछ और भी पहन लो, सर्दी बहुत है। इंसान सोचता है ओल्ड फैशन की वजह से वालिद को बाहर की दुनिया का अंदाज़ा ही नहीं है। अक्सर औलादें अपने बाप को एक ही मेयार पर परखती हैं, घर, गाड़ी, प्लॉट, बैंक बैलेंस, कारोबार और अपनी नाकामियों को बाप के खाते में डालकर खुद सुरखरू हो जाते हैं। हमारे पास भी कुछ होता तो अच्छे स्कूल में पढ़ते, कारोबार करते, वगैरह वगैरह। इसमें शक नहीं कि औलाद के लिए आइडियल भी इनका बाप ही होता है, लेकिन कुछ बातें जवानी में समझ नहीं आती या समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए कि हमारे सामने वक्त की ज़रूरत होती है, दुनिया से मुकाबले का भूत सवार होता है। जल्द से जल्द सब कुछ पाने की जस्तजू में हम कुछ भी खो रहे होते हैं, जिसका एहसास बहुत देर से होता है। बहुत सी औलादें वक्ती महरूमियों का पहला ज़िम्मेदार अपने बाप को करार देकर हर चीज़ से बरीउज़िम्मा हो जाती हैं। वक्त गुजर जाता है, अच्छा भी बुरा भी, और इतनी तेज़ी से गुजरता है कि इंसान पलक झपकते माजी की कहानियों को अपने इर्द गिर्द मंडलाते देखना शुरू कर देता है। जवानी, पढ़ाई, नौकरी, शादी, औलाद और फिर वही स्टेज, वही किरदार जो निभाते हुए हर लम्हा अपने बाप का चेहरा आँखों के सामने आ आ कर बाप की हर सोच, फिक्र, एहसास, परेशानी, शर्मिंदगी और अजियत को हम पर खोल के रख देता है। बाप की कभी कभी बिला वजह खामोशी, कभी पुराने दोस्तों में बेवजह कहे लगाना, अच्छे कपड़ों को नापसंद करके पुरानों को फ़ख्र से पहनना, खानों में अपनी सादगी पर फ़ख्र, कभी कभी सर झुकाए अपने छोटे छोटे कामों में मगन होने की वजह, यानी कभी बग़ैर वजह थकावट के बहाने सरे शाम बत्ती बुझा कर लेट जाना, नज़रें झुकाए नहायत महवियत से डूब कर कुरान की तिलावत करना, समझ तो आना शुरू हो जाता है, यानी कब जब अपने बच्चे आते हैं, लेकिन बहुत देर बाद जब हम खुद रातों को जाग जाग कर दूसरे शहरों में गए बच्चों पर आयतुल कुर्सी के दायरे फूंकते हैं। जब अपने बच्चे छोड़ के जाते हैं ना दूर, आप अकेले, आप कहते पता नहीं खाना भी खाया है कि नहीं, पता नहीं सर्दी में ना हो, तो फिर अपने माँ बाप का वो वक्त याद आता है जो वो आपके लिए फ़िक्र करते थे। जब हम सर्दी में वज़ू करते हुए अचानक सोचते हैं, पूछ ही लें बेटा आपके यहाँ गर्म पानी आता है, जब कहर की गर्मी में रूम कूलर की खुनक हवा बदन को छूती है तो पहला एहसास जो दिल दिमाग में हलचल सी मचाता है वो कहीं औलाद गर्मी में तो नहीं बैठी। जवान औलाद के मुस्तकबिल, शादियों की फिक्र, हज़ार ताने बाने जोड़ता बाप थक हार कर अल्लाह और इसके पाक कलाम में पनाह ढूंढता है, तब याद आता है हमारा बाप भी एक एक हरफ एक एक आयत पर रुक रुक कर बच्चों की सलामती खुशी बेहतर मुस्तकबिल की दुआएं ही करता था। हर नमाज के बाद उठते कपकपाते हाथ अपनी दुआओं को भूल जाते होंगे। हमारी तरह हमारा बाप भी एक एक बच्चे को नमनाक आँखों से अल्लाह की पनाह में देता होगा। सरे शाम कभी कभी कमरे की बत्ती बुझाकर इस फिक्र की आग में जलता होगा कि मैंने अपनी औलाद के लिए बहुत कम किया। औलाद को बाप बहुत देर से याद आता है, इतनी देर से कि हम उसे छूने महसूस करने और इसकी हर तलही और अजियत और फिक्र का इजाला करने से महरूम हो चुके होते हैं। यानी इनकी कदर का बात यह जब ये होते नहीं हैं। ये एक अजीब एहसास है जो वक्त के बाद अपनी असल शक्ल में हमें बेचैन ज़रूर करता है, लेकिन ये हकीकतें जिन पर बर वक्त यहाँ हो जाएं वही खुशकिस्मत औलादें हैं। हम वो औलादें हैं जिनको ज़िंदगी में माँ बाप की कदर आ गई, उनकी कदर कर लीजिए। औलाद होते हुए हम समझते हैं कि बाप का छूना, प्यार करना, दिल से लगाना ये तो बचपन की बातें हैं। बाप बनकर आंखें भीग जाती हैं, पता नहीं बाप ने कितनी दफ़ा दिल ही दिल में हमें छाती से लगाने को बाजू खोले होंगे। यानी जवान बच्चों को भी हक दिया करें। माँ बाप का दिल चाह रहा होता है जवान बच्चों के जिस्म को मस करना, बचपन में तो खूब प्यार लेते देते हैं, बड़े होकर देते नहीं, दूर दूर फिरते हैं, हेलो क्या ठीक है, चलो पैसे दे दो, चलो जाओ खाए खाना खाए चले गए। उस वक्त माँ बाप का दिल कर रहा होता है कि आप उनके साथ लगें, मस करें उनको। प्यार के लिए इसके होंठ तड़पते होंगे और हमारी बेबाक जवानियों ने इसे ये मौका नहीं दिया होगा। हम जैसे दरमियाने तबके के सफ़ेद पोश लोगों की हर ख्वाहिश, हर दुआ, हर तमन्ना औलाद से शुरू होकर औलाद पर ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन कम ही बाप होंगे जो ये एहसास अपनी औलाद को अपनी ज़िंदगी में दिला सके हों। ये एक छुपा मीठा मीठा दर्द है जो बाप अपने साथ ले जाता है। औलाद के लिए बहुत कुछ करके भी कुछ ना कर सकने की हलिश आखिरी वक्त तक एक बाप को बेचैन रखती है, और ये सब बहुत शिद्दत से महसूस होता है जब हम बाप बनते हैं, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हैं तो बाप के दिल का हाल जैसे कुदरत हमारे दिलों में मुंतकिल कर देती है। औलाद अगर बाप के दिल में अपने लिए मोहब्बत को खुली आँखों से वक्त पर देख ले तो शायद इसे यकीन हो जाए कि दुनिया में बाप से ज़्यादा औलाद का कोई दोस्त नहीं होता। माएँ अक्सर अपने जज्बे दिखा भी देती हैं, सुना देती हैं, लेकिन आज के दौर में बड़ी मज़लूम हस्ती है बाप, साथ नहीं बैठते, डरे रहते हैं, पैसे दे दें, गाड़ी की चाबी दे दें, मोबाइल दिला दें, बस ये है बाप, मशीन बनकर कमाता है और दुनिया से चला जाता है। अपनी ज़िंदगी में शायद उससे 5,000 लेने भी मुश्किल लगें, और 5 करोड़ की जायदाद आपके नाम लगवा कर बाप कब्र में चला जाता। काश हमें इसका ज़िंदगी में एहसास हो जाए। अल्लाह अकबर, कहिए शऊर से रब रहम हुमा कमा रब यानी सगीरा, रब रहम हुमा कमा रब यानी सगीरा। सब कुछ समझ आ रहा है क्या सीखा। दुआ कीजिए कि इस रुकू के एक एक लफ्ज़ पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, माँ बाप के साथ अच्छे रवैये और बेहतरीन सलूक करने हैं, रिश्तेदारों, मिस्कीन और मुसाफिरों के हकूक़ पूरे करने हैं, हाजतमंदों को नरमी से जवाब देना है, बुखल और फजूल खर्ची नहीं करनी, और अल्लाह के अहकामात की कितनी पाबंदी करती हूँ इस पे अपना हाल देखना है, और कभी माँ बाप पर चीखना नहीं, बुढ़ापे में उनसे शिकवे और शिकायतें नहीं करनी, अपने माजी के किस्से याद कर करके उनको रुलाना नहीं, उनको वक्त देना है, उनसे बातें सुननी और सुनानी है, और उनके लिए कसरत से दुआएं करनी है। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को हमसे राज़ी कर दें। और फजूल खर्ची नहीं करनी, याद रखिए आसाइश भी जायज़ है, आराइश भी जायज़ है, नुमाइश जायज़ नहीं। आज के दौर में क्यों गरीब गरीब है, क्योंकि हमारे पास आसाइश बहुत है, और ख़ास तौर पर हमारे मुल्कों में तबकाती कशमकश कितनी है। गला हुआ फल कौन खाते हैं, और फ्रेश एक ही साइज़ का फल कौन खाता है, बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं है। मैं आपको नॉर्वे की गवाही दे सकती हूँ, अच्छी बात तो अच्छी है चाहे किसी दुश्मन मुल्क की हो, एक दूध पीते हैं सब, एक ही स्टोर्स हैं, मेड्स भी वहीं से जाकर अपने लिए फ्रूट सब्ज़ी दाल खरीदती हैं जहाँ से मास्टर्स और मिस्ट्रेसेस खरीदती हैं। تصور نہیں ہے وہاں کوئی گلی سڑی سبزی پھل کیلا کھا سکے. ہر دن سٹورز کی وہ انسپیکشن کرتے ہیں اور جس کی ڈیٹ ایکسپائرڈ ہے اس کو پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں, وہ سٹورز میں نہیں ملتا. یہاں تو آپ ذرا غریبوں کے بچوں کو دیکھیں, اگر کیلا دیتے بھی ہیں تو خدا کے لیے ٹھیک دے دیں. آپ کے گھر میں تو 10 کیلے پڑے ہیں, آپ نے ماسی کو ایک دیا, ڈھونڈ کے دے رہے ہیں کس کو داغ لگا ہوا ہے وہ دے دوں, وہ سیب دینا ہے جس باہر سے کیڑا دکھ رہا ہے, ایک دے رہے ہیں نا اس کو, سب سے اچھا سیب اس کو دے دیں. آپ 10 میں سے اچھا اچھا حصہ نکالیں گے پھر بھی 6 سیب آپ کے پاس ہوں گے. یاد رکھیں ان غریبوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریے. آج کے نوکر تبذیر کی وجہ سے انتقام کی آگ میں بھڑک کر کئی دفعہ مالکوں کو گولیوں سے مار دیتے ہیں. ہم 100 روپیہ مانگے تو آگے سے آنکھیں کھولتے ہیں یہ, اور ہمارے ہی ہاتھوں درزیوں اور جیولرز کو کئی کئی ہزار کے بل بھیجے جاتے ہیں. جتنا کسی معاشرے میں پمپ اینڈ شو ہوگا نا, اتنا وہاں غریب اور امیر کے بیچ میں نفرت ہوگی. تو فضول خرچی ہر چیز کی بری ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے مال کو صحیح طرح استعمال کرنے والا بنا دے.